ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಸಭಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತಜನೋ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಇಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಶುಭ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಔರ್ ಆಜ್ ಉಸ್ಕಾ ಅಂತಿಮ ದಿವಸ ಹೈ ಇಸ್ ಮಹೀನೆ ಕಾ ತೋ ಬಡಾ ಹಿ ಶುಭ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಮೈಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕುಛ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೈಕ್ ಸೇ ಬೋಲೋ ಐಸೇ ಬೋಲೋ ಚಲೇಗಾ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ವಿನಯ ವರ್ಮಾ ಜೀ ಕಾ ಔರ್ ನೀರಾ ಜೀ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ಇತನಾ ಪ್ರೇಮ ರಖತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮೇಶಾ ಅಪ್ನಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಮಕೋ ದೇತೆ ರಹತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ ಸಬ್ಕೋ ಏಕ ಅವಸರ ದಿಯಾ ಕಿ ಹಮ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಬೈಠ ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕೀರ್ತನ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಸುನೆ ತೋ ಯೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಬಡಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ಐಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಯು ನೋ ಏಕ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ ಕಿ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಕೌನ್ ಹೈ. ಐಸೆ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಸುನ್ತೆ ರಹತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೋ ಸುನ್ನೆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಹೈ. ವನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇಫ್ ಹೀ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್? ವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಬೋನಾಫೈಡ್ ಡಿವೋಟಿ, ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಬೋನಾಫೈಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್? ದ ವನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಬೋನಾಫೈಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. ತೋ ಜೊ ಮ್ಯಾ ತೋ ಮ್ಯಾ ದೇಖಾ ಯಾ ಪೇ ಇತನಾ ಅಚ್ಚಾ ಯ ಮಂದಿರ ಹೈ ಔರ್ ನೀರಾ ಜೀ ನೇ ಬಹುತ್ ಇಸ್ಕೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೇ ಮೇ ಬನಾಯಾ ಹೈ. ತೋ ಮೇರಾ ಧ್ಯಾನ್ ತುರಂತ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಪರಿವಾರ ಪೇ ಗಯಾ, ಜಹಾ ಪೇ ಮಾತಾ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವಜಿ ಗಣೇಶ ಜಿ ಸಭಿ ಹೈ. ತೋ ಮೇ ಸೋಚ ರಹಾ ಥಾ ಕಿ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಾತೆ ಕರತೆ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಔರ್ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ಜಾಕೆ ಕೋಯಿ ಶಾಂತಿ ಢೂಂಡೆ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ಮಿಲೇಗಾ ನಹೀ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾ ನೇಚರ್ ಹೀ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಹಿಲೋರೆ ಲೇತೆ ರಹತಾ ಹೈ, ಯು ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಬಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆಡ್ ಜೋ ಬಿ ಹಮಾರಿ ಚುನೌತಿಯಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೇನ್ ಪೀಸ್. ಯ ಮೈ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಪರಿವಾರ ಸೇ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಗಣೇಶ ಜಿ ಹೈ. ಗಣೇಶ ಜಿ ಕಾ ವಾಹನ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಚೂಹಾ. ಔರ್ ಶಿವಜಿ ಕೆ ಗಲೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಚೂಹೆ ಕೋ ಕೌನ್ ಖಾತಾ ಹೈ? ಶಿವಜಿ ಕೆ ದೂಸರೆ ಬೇಟೆ ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಉಸ್ಕಾ ವಾಹನ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಸಾಂಪ್ ಕೋ ಕೌನ್ ಖಾತಾ ಹೈ? ಶಿವಜಿ ಕಿ ವೈಫ್ ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಉನ್ಕಾ ವಾಹನ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಶೇರ್. ಶೇರ್ ಮೋರ್ ಕೋ ಖಾತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ನಹೀ? ಯಾ ಫಿರ್ ನಂದಿ ಜೋ ಶಿವಜಿ ಕಾ ವಾಹನ ಹೈ. ತೋ ಚೂಹಾ ಜೊ ಹೈ ಗಣೇಶ ಜಿ ಕಾ ವಾಹನ ಹೈ, ಚೂಹೆ ಕೋ ಸಾಂಪ್ ಖಾತಾ ಹೈ, ವೋ ಉಸ್ಕಾ ಭೋಜನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಭೋಜನ ಹೈ. ಐಸಾ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ ಕಿ ಕೋಯಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಔರ್ ಸಾಂಪ್ ಕೋ ಖಾನೆ ವಾಲಾ ಮೋರ್ ಹೈ, ಪಿಕಾಕ್ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೇಕ್, ಔರ್ ಪಿಕಾಕ್ ಕೋ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಶೇರ್ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ ಪರಿವಾರ ಮೇ ರಹಕೆ ಕೋಯಿ ಏಕ ದೂಸರೆ ಕೋ ನಹೀ ಖಾತಾ ಹೈ ನಾ, ಏಕದಮ್ ಶಾಂತಿ ಬನಾ ಕೆ ರಖಾ ಹೈ. ತೋ ಮತಲಬ್ ಸಬ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಚುನೌತಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಹೈ. ತೋ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಯು ನೋ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಭಿ ಸೀಖನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಕೈಸೆ ಇಸ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಅಂದರ್ ಯು ನೋ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೀ ಜಾಯೆ. ಔರ್ ಕೋಯಿ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅಗರ್ ಸಚ್ ಮೇ ಸೂತ್ರ ಜಾನ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೈ ತೋ ವೋ ಗೀತಾ ಮೇ ದಿಯಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ಕೋ ಗೀತಾ ರಿಫರ್ ಕರ್ನಿ ಪಡೇಗಿ. ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಭೋಕ್ತಾ ರಾಮ್ ಯಜ್ಞ ತಪ್ಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ರಕ್ಷತಿ. ಕಿ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಶಾಂತಿ ಢೂಂಡ ರಹೇ ಹೋ ತೋ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಆಪ್ ಶಾಂತಿ ಪಾ ಸಕತೆ ಹೋ. ಕಿ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಭೋಕ್ತಾ ಕೌನ್ ಹೈ, ಹಮಾರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಎಂಜಾಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮೇ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಭೋಕ್ತಾ ಸಮಜ್ ಬೈಠೆ ಹೈ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಹತೆ ಕಿ ನಹೀ ಆಪ್ ಭೋಕ್ತಾ ನಹೀ ಹೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಜೆಸೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ವೈಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಭೋಕ್ತಾ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಭಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ, ಹಮ್ ಸಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೈ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ. तो भागवत में जो 10 विषय बताए हैं, अत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति राष्ट्रय, तो उसमें प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। तो शांति का अगर कोई सूत्र हमको चाहिए तो हमको भगवत गीता का सहारा लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अभी आप लोगों ने कई बार दामोदर आरती अटेंड की है और कई बार मैंने कोशिश भी किया कि आपको अलग अलग मैं सुनाते रहूं, तो कभी आपको मैंने हनुमान जी की कथा सुनाई है, जैसे लास्ट टाइम अंजू के यहाँ पे, कि कैसे हनुमान जी समुन्द्र को लांग के जाते हैं। कभी मैंने गाय के ऊपर चर्चा की है कि गायों का क्या महत्व है, कभी हमने किसी गोवर्धन लीला या किसी और पे चर्चा की है। तो कई बार ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, कई बार सुनी सुनाई बातें हमको लगता है हमको सभी ज्ञात है, लेकिन भगवान की जो कथा है उसको बार बार सुनना चाहिए। और ये बात परीक्षित उनको बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी को, ये कहते हैं कि देखो आप ये मत सोचो कि मैं राजा बेचारा भूखा प्यासा बैठा हूँ, 3-4 दिन से अन्न का एक कण भी नहीं खाया है, एक घूंट मैंने पानी नहीं पिया, एक झपकी मैंने नींद की नहीं ली है, तो आप किसी चीज़ को शॉर्टकट मत करना, आप इसको अच्छी तरह से सुनाते रहो। और वो कहते हैं निवृत तर्षय रूपगी माना भवोष दाक्षोत्र मनोभिरामात उत्तम श्लोक गुणानुवादान पुमान विराजेत विना पशुनाथ। सो प्रभुपाद जी जब भी लेक्चर देते थे ना, तो कई बार उसमें श्लोक कोट करते थे। तो मैं एक भक्त से प्रश्न पूछ रहा था कि कई बार क्या होता है कि सामने वाले बहुत श्रोतागणों को संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो हम क्यों कहते हैं? तो कहा दो कारण है, एक तो ये कि ये संस्कृत एक दवाई की तरह है, यू नो, ये श्लोक असर करता है। आप चाहे जानो दवाई का पावर क्या है या नहीं है, और अभी तो रिसर्च हुई है कि ये जो श्लोक है भगवान से अभिन्न है, यू नो, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। और दूसरा, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स द ऑथेंटिसिटी कि हम जो बात कर रहे हैं ये कोई कपोल काल्पित मनगढ़ंत बातें नहीं है, यू नो, ये जो शास्त्रों में हमारी दी है ये, और शास्त्र जो है वो हमारी माँ के समान है। जैसे प्रमाण की अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं इस दुनिया में, यू नो, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, राइट, मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, कि जिसको आप देखो और समझ जाओ, है कि नहीं, एक वो है। दूसरा है अनुमान प्रमाण, यू नो, कि जैसे आपने एक चीज देखी है और उसके बेसिस पे आप अनुमान लगाते हो कि ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। कई बार हम अनुमान लगाते हैं ना बहुत सारी चीजों का, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक हाथी है, समझो 4 अंधे व्यक्ति हाथी को अलग अलग जगह से पकड़े, तो उनके सेंस परसेप्शन के हिसाब से वो 4 अलग अनुमान लगाएंगे। जो उसका पैर पकड़ेगा वो बोलेगा कि हाथी इज लाइक ए पिलर, अंधा है वो। जो उसकी पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा हाथी इज लाइक ए रोप। जो सूंड पकड़ेगा वो कहेगा हाथी इज लाइक ए होस पाइप। और जो उसको शरीर को छुएगा उसको लगेगा इट्स लाइक ए वॉल, है ना। तो अनुमान प्रमाण होता है। तो प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, अनुमान मतलब आप उसको देख के अनुमान लगाते हैं। लेकिन इन दोनों प्रमाण के अंदर ना बहुत त्रुटि है। क्यों? पहले तो डायरेक्ट परसेप्शन में क्या होता है, दैट अवर सेंसेस आर लिमिटेड, यू नो, वी कैनॉट, अवर सेंसेस कैनॉट परसीव एवरीथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 4th फ्लोर पे बैठे हैं, यू नो, नीचे कोई बात कर रहा है, आवाज हो रही है, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा जो हियरिंग रेंज है वो उतना नहीं है, या फिर हमारा जो साइट है वो भी बहुत दूर तक नहीं देख सकता, यू नो, देयर इज अ लिमिटेशन, या इस दीवार के पीछे क्या है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो वी हैव इनहेरेंट 4 डिफेक्ट्स विच इज देयर इन एनी ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम लोग को हमारे संरचना समझनी है, हमारा यू नो इंजीनियरिंग समझना है, तो ये पहले पता चलना चाहिए कि देर आर 4 थिंग्स विच आर देयर इन अस, ऑल ऑफ अस, भ्रम, प्रमाद, कर्णापटव एंड विप्रलिप्स। सो फर्स्ट इज दैट अवर सेंसेज आर लिमिटेड, दे आर इम्परफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कमिट मिस्टेक, राइट। हमने जीवन में कुछ मिस्टेक की है, एवरी वन। प्रभुपाद कहते हैं इवन गांधी जी कमिटेड मिस्टेक ऑल्सो, ऑल दो ही वॉज सच ए यू नो वंडरफुल पर्सन। सो वी कमिट मिस्टेक बिकॉज वी गेट इल्यूजन, यू नो, कई बार जैसे रात को अगर जा रहे हैं तो रस्सी को हम लोग सांप समझ बैठेंगे। सो वी गेट इल्यूजन, एंड टू कवर अप अवर मिस्टेक वी इंडल्ज इन टू समथिंग नोन एज वॉट, टू कवर अप अवर मिस्टेक वॉट वी डू, वी इंडल्ज इन टू चीटिंग प्रोपेंसिटी, या टेलिंग लाइज, चीटिंग, यू नो। जैसे पर क्या होता है कि ये दुनिया में 2 तरह के लोग है, अगर आप ध्यान से देखो ना, सो वन इज द चीटर्स एंड अदर इज चीटेड, यू नो, बिकॉज हम वर्मा जी के घर पे बैठे हैं तो हम ये एग्जाम्पल देंगे कि एक बार एक व्यक्ति ऐसे रास्ते पे जाते रहता है और एक रेस्टोरेंट पे ऐसा एक बोर्ड लगा रहता है, कम ईट एज मच एज यू कैन, डोंट पे एनी बिल। आई होप आपने ऐसा बोर्ड नहीं लगाया है नहीं तो कोई सोचेगा क्वालिटी रेस्टोरेंट और उसके बाहर ऐसा बोर्ड आपको देखने मिल जाएगा। सो लिखा रहता है कम ईट एज मच एज यू कैन, डोंट पे एनी बिल, योर ग्रैंडसन विल पे। सो वन पर्सन गेट्स वेरी यू नो इन्थ्यूज्ड, ही एंटर्स इनटू द रेस्टोरेंट एंड ईट्स टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड हिज स्टमक्स कंटेंट ऑल्सो। जितना खा सकता था वो खा लिया क्योंकि बिल तो चुकाना नहीं है उनको। और खाने के बाद जब बाहर जा रहा था तो मैनेजर टैप्ड हिम ऑन हिज शोल्डर एंड प्रोड्यूस्ड वन बिल। सर बिल बोला, अरे तुमने लिखा है ईट एज मच एज यू कैन, डोंट पे एनी बिल, यू नो योर ग्रैंडसन विल पे, क्या और तुम मुझे बिल दे रहे हो। तो उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है सर, बट दिस इज योर ग्रैंडफादर्स बिल। सो ही वांटेड टू चीट बट गॉट चीटेड एक्चुअली। तो इसी प्रकार से सो देन वी हैव दिस फोर काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन अस। तो नहीं, दुनिया इसी तरह से है सर एक्चुअली। हम लोग कभी सोचते देर आर नो फ्री लंचेस एक्सेप्ट इन हरी कथा, इन कीर्तन प्रोग्राम देर आर फ्री लंचेस, अदरवाइज देर आर नॉट। सो इसके लिए बहुत जरूरी है हमको ये चीज समझना कि हमारी संरचना क्या है, हम लोग कैसे बने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सो दैट दैट कैन गिव अस ए प्रॉपर डायरेक्शन कि भाई हम लोग कौन है और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए हमारे को अल्टीमेटली। यू नो ये कार्तिक महीने का ये जो लास्ट दिन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इंडीड ये जो पांच दिन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको पंचक, भीष्म पंचक कहा गया है क्योंकि भीष्म देव जो कि नो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे और उनके शरीर में इतने बाण थे कि दो बाणों के बीच में दो उंगली जाने का भी स्थान नहीं था, इतने सारे बाण उनके शरीर पे लगे हुए थे। और भीष्म पितामह एक महाजन है, ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 12 लोग हैं जो भगवान को जानते हैं अच्छी तरह से, उन 12 में एक भीष्म पितामह है। तो हालांकि कई लोग भीष्म पितामह के ऊपर उंगली उठाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, पर उन्होंने केवल कृष्ण की इच्छा को सर्वोपरि रखा और कहा कि अगर कृष्ण मुझसे चाहते हैं ऐसा काम करवाना तो मैं ऐसा करूंगा, यू नो। अदरवाइज केवल 12 लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, अदरवाइज कोई भगवान को समझ नहीं सकता, यू नो। भगवान कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, भगवान को तो छोड़ो कर्म को नहीं समझ सकते हम लोग। किम कर्मेति कव्यो पत्र मोहिता, भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है ये बड़े बड़े कवि लोग भी इसको यू नो पहचान नहीं सकते हैं। तो भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भीष्मदेव अच्छी तरह से भगवान को जानते थे और भगवान की इच्छा को लेके वो अधर्म के मार्ग पे और लड़ने लगे, क्योंकि भगवान ये पॉइंट बताना चाहते थे कि हाई ओवर यू मे बी पावरफुल लाइक भीष्मा बट इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ अधर्मा देन यू विल बी डूम्ड, यू नो। सो लेकिन जब भीष्म पितामह यू नो भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी चीजें भगवत गीता में कही, जैसे कि एक पॉइंट कहते हैं भगवान माया अधिक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम, वो कहते हैं कि दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन ओ अर्जुना, एंड ही डिडंट जस्ट स्पीक, ही प्रूव्ड इट एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड टू अर्जुन इन द सेम बैटलफील्ड। कब? जयद्रथ का स्टोरी आपको पता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, जो चक्रव्यूह तोड़ के अंदर गया, तो ही वॉज नॉट नोइंग हाउ टू कम आउट, बट वैन ही एंटर्ड ही वॉज फाइटिंग लाइक ए सच ए ब्रेव सोल्जर कि सारे लोग उससे यू नो उन लोग को लगा ये 2020 है, वन डे में खत्म हो जाएगा, इतना स्पीड में वो लड़ाई कर रहा था। उसको रोकने के लिए 7 लोगों ने एक साथ उस पर अटैक किया, जिसके अंदर बड़े बड़े महारथी लोग थे, यू नो इंक्लूडिंग कर्ण, भीष्म और ये सब लोग। और उस दिन जब अर्जुन पीछे पीछे गया अभिमन्यु को बचाने के लिए, अर्जुन तो शायद दूर था, जो दूसरे पांडव लोग जब गए तो कोई भी उसको पार नहीं कर पाया क्योंकि बीच में जयद्रथ आ गया। और जयद्रथ को एक दिन के लिए वरदान प्राप्त था शिवजी से कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा आएगा जब उसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाएगा, एंड वो एक दिन उसने उस समय पे बिताया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। नतीजा क्या निकला? अभिमन्यु मारा गया। जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन ने यह प्रण लिया कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारता हूं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब उसने ये प्रण तो ले लिया, कृष्ण को पूछा नहीं, और वो जाके आराम से सो गया। हालांकि दुखी था वो बेचारा और रो रहा था, और कब रो रहा था? गीता सुनने के बाद। तो कृष्ण रोने लगे तो अर्जुन बोल रहा है तुम क्यों रो रहे हो, तो बोला यार पूरा गीता सुना है फिर भी तू रो रहा है ना। फिर कृष्ण कहने लगे कि ऐसा नहीं है गीता सुनने के बाद कोई इनसेंसिटिव हो जाता है, यस यू नो यू हैव योर फीलिंग्स योर इमोशंस एवरीथिंग इज देयर, बट कृष्ण सोच रहे थे कि अभी इसको कैसे बचाऊं मैं अर्जुन को, क्योंकि जयद्रथ के पास एक वर है और पूरी की पूरी कायना जयद्रथ को बचाने के लिए उस दिन लग गई। जितनी भी कौरवों की सेनाएं थी पूरी की पूरी सेना सिर्फ एक लक्ष्य पे थी कि जयद्रथ बच जावे, और जयद्रथ बचेगा तो क्या होगा अर्जुन मर जाएगा, और अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा तो युद्ध खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो सब लोग जयद्रथ को बचाने के लिए लग गए और अर्जुन बहुत स्पीड से सबको चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था जयद्रथ को मारने के लिए, लेकिन लगभग शाम हो गई और जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाया वो, और जयद्रथ को छुपा के रखा था। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, मया दीक्षेण प्रकृति सुयते से चराचरम, ही एक्चुअली शोड हिज ऑप्युलेंस एंड ही शोड दैट दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इंडीड वर्क्स अंडर माय डायरेक्शन, और उसको करने के लिए क्या किया, उन्होंने सूर्य को ढक दिया। सूर्य को जब ढका और अर्जुन को कहा कि पार्थ देख क्या रहे हो, ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, क्योंकि जयद्रथ मूर्ख के जैसे आप बाहर आ गया, उसको लगा अभी तो अर्जुन मर जाएगा, और उसको मरते हुए अर्जुन को देखना चाहता था वो कि क्या मजा आता है देखो अर्जुन को मार के। तो जब बाहर आया और अर्जुन ने फिर जयद्रथ को मार के बचा दिया, तो भगवान कृष्ण ने ये बात वहां पे प्रूव की जो उन्होंने बताई थी। तो भीष्म पितामह भगवान के इतने बड़े भक्त थे, तो भगवान ने एक प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने दूसरा प्रण लिया था कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा, है कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग करवा के रहूंगा। और एक दिन भीष्म पितामह ने भी ऐसा भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन उसके सामने टिक नहीं पाया, और इतना स्पीड से वो तीर चला रहे थे कि अर्जुन का हाथ यू नो तुनीर में जाने के पहले ही भीष्म का तीर बाहर आता था, तो ऐसा लगता था कि एक चक्र है जो बाहर आ रहा है और इतना स्पीड से, हालांकि अर्जुन का नाम सव्यसाची है, वो दोनों हाथ से तीर चला सकता था, लेकिन भीष्म पितामह के सामने उस दिन टिक नहीं पाया, वो इतना भयंकर युद्ध किया, क्योंकि भीष्म पितामह कौन है, वो साक्षात परशुराम जी के शिष्य हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो इतना जोर से उन्होंने युद्ध किया भयंकर, और अर्जुन को पूरा छलनी छलनी कर दिया, अंदर कृष्ण को भी बहुत सारे बाण लगे, और कृष्ण अर्जुन को कह रहा था कि मारो पार्थ मारो कुछ करो, और पार्थ से कुछ हो पा ही नहीं रहा था, तो कृष्ण को गुस्सा आ गया। वो भगवान जो गीता में गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, यू नो क्रोध नहीं करना चाहिए, उनको क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत वो नीचे कूदे अपने रथ से, और एक रथ का पहिया उठा के और भीष्म पितामह की और दौड़ के आए, और दौड़ के जैसे ही उनको मारने गए, भीष्म पितामह ने क्या क्या बाण वाण सब छोड़ दिया, वो यही चाहते थे। और अर्जुन वो रथ से कूदा और कृष्ण के पैर पकड़ लिए, बोले अरे ये क्या कर रहे हो, तुमने तो प्रण लिया है कि शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन क्योंकि उनके भक्त ने प्रण लिया था, तो भक्त अपने भक्त मतलब भगवान अपने भक्त का प्रण रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो देखते नहीं है कि यू नो प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, है ना। तो भक्त के मान को वो कहीं भी टलने नहीं देते हैं, तो तुरंत उसको अटैक करने के लिए, और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा हाथी के ऊपर एक सिंह गरजता हुआ आता है और जैसे अटैक करता है वैसे कृष्ण भीष्म पितामह की ओर कूदे, और अर्जुन ने उसको पकड़ लिया और भीष्म ने फिर छोड़ दिया अपना प्राण। और जिस तरह से कृष्ण उनको मारने के लिए आए थे, उनका मुकुट गिर गया था, उनके बाल पूरे एकदम मिट्टी में धुले हुए थे, उनके शरीर पर लहू लहान था, वो सीन भीष्म पितामह आज यहाँ पर याद करते हैं। तो ये जो भीष्म पंचक उन्होंने किया, तो उसमें अपना शरीर छोड़ने के पहले, अभी एक महीने के बाद नो अपना वो शरीर छोड़ देते हैं, फिर जब उत्तरायण आता है तभी, तो सोच रहे थे, और जब भगवान उनके पास में आए तो केवल यू नो भीष्म के पास ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था कि वो भगवान को देखते हुए अपना प्राण त्यागे ना। हम लोगों को मालूम नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, यू नेवर नो व्हेन यू नो दिस थिंग विल स्ट्राइक अस, बट भीष्म हैड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो व्हेन कृष्णा केम, तब भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं की, और ये प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में आती है जिसको भीष्म स्तुति के नाम से जानते हैं, और इतना बढ़िया वो प्रेयर्स है कि उसको सुनने में और गाने में भी इतना अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक खाली उसका पहला वर्ष सुनाता हूँ, और भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्ने ससुखम पगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषियद्भव प्रवाह। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मति जो है वो केवल और केवल आपके चरणों में ही स्थित हो जाए, और जिस प्रकार से गंगा अविरत बहती हुई निकलती है और सभी बाधाओं को दूर करते हुए अल्टीमेटली गंगा सागर में जाके मिलती है, उसी प्रकार से मेरी मति जो है वो आपके चरणों में आ जाए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं और फिर अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो ये भीष्म पंचक बड़ा ही महत्वपूर्ण पीरियड माना गया है कार्तिक का। तो कार्तिक के महीने में इस तरह से बैठ के कीर्तन सुनना, कथा सुनना, ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। और कभी कभी हम लोग हमारा सौभाग्य समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या है, है कि नहीं। तो मैं खाली आपको जो पहला वर्ष है हमारा दामोदर अष्टकम का, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आपने सुनी है। तो सत्यव्रत मुनि जब ये दामोदर अष्टकम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं नमामि ईश्वरम, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमत्यंत तो भुक्ते गोप्या। ये आठ में से ये पहला स्टैंजा है, पहला श्लोक है। तो कहते हैं कि भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, और वो क्यों नमन करते हैं, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि ये जो कृष्ण है जो आपको बालक के रूप में देख रहा है, दिख रहा है, और ये अलग अलग लीलाएं कर रहा है, और इसकी लीलाओं को देख के शायद कोई मात खा सकता है ना, कोई सोचेगा एक तो ऑर्डिनरी बच्चा है, एक छड़ी से डर के रो रहा है, भाग रहा है, या कोई सोचेगा कि मेरे बचपन में मैं भी अपनी माँ से डर के ऐसे ही भागता था, शायद मेरी स्टोरी तो नहीं है। तो कहते नहीं जी, नमामि ईश्वरम, ये ईश्वर की बात हो रही है। और ईश्वर का नाम सुन के बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नो हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु कहते हैं कि इंडिया इज सुपर मार्केट ऑफ गॉड्स, सो मैनी, आप ढूंढो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हु डिक्लेयर देमसेल्फ एज यू नो, जैसे इन साउथ इंडिया देर इज वन इंश्योरेंस एजेंट, ही हैज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज कल्कि अवतार। सो वन ऑफ माई फ्रेंड गौरांग प्रभु ही सेज दैट यू नो वन इंश्योरेंस एजेंट इन यू नो साउथ यू नो ही इज वेरी बल्की क्लेम्स टू बी कल्कि, इज दैट ही डजंट हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्चुअली, पर अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित कर, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो कह नहीं जी, ईश्वर के बारे में हो रही है, और हु इज ईश्वर वो नेक्स्ट वर्ड में बताते हैं, सच्चिदानंद रूपम, कि जिसका सच्चिदानंद रूप है, सत चित और आनंद, यू नो फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, वन हु हैज दिस, और अपने रूप को लेके कोई यू नो धोखा नहीं कर सकता। तो भगवान का ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वो भगवान जो है वो सभी कारणों के कारण है, ही इज द वन विदाउट ए सेकेंड, यू नो एको हम द्वितीय नास्ती, वो भगवान के बारे में बात हो रही है, सच्चिदानंद रूपम। और फिर आगे उसके दूसरे क्वालिटी के बारे में बताते हैं और कहते हैं लसत कुंडलम। लसत कुंडलम का क्या मतलब होता है, कुंडल मतलब कान की बाली, हाँ, और लोग कुंडल क्यों पहनते हैं, अपने कान में बाली क्यों पहनते हैं, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, राइट, एवरी वन टू ब्यूटिफाई अवर ओन बॉडी वी टेक शेल्टर ऑफ सम ऑर्नामेंट्स, उसको सजाते हैं ऑर्नामेंट से। लेकिन कृष्ण के केस में लसत कुंडलम का ये मतलब होता है कि ऑर्डिनरी आदमी अपने आप को आभूषण से सजाता है, लेकिन कृष्ण का पूरा शरीर ही अपने आप में एक आभूषण है। तो जैसे समझो किसी ने एक अच्छी बाली पहनी है ना, तो कोई उस व्यक्ति से आके कहेगा कि अरे आपने कितना अच्छा कुंडल कान में धारण किया है, लेकिन कृष्ण जब कुंडल धारण करते हैं तो कोई आके कृष्ण को नहीं पूछता कि कितना अच्छा कुंडल पहना है, कोई कुंडल को जाके पूछता है कि कितना अच्छा कान धारण किया है, कि ऐसे कान में जाके पड़ा है तू, यू नो कृष्ण का। जैसे सोचो कृष्ण जब अपने हाथ से बंदरों को माखन खिलाते हैं तो ऊपर से ब्रह्मा जी के उद्गार फूट पड़ते हैं, यू नो कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो कहते हैं कि अरे कितना भाग्य इन बंदरों का, देखो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहा है, ये बंदरों के साथ लीला कर रहा है और बंदरों को अपने हाथ से माखन खिला रहा है, कितना मतलब वो उनको आश्चर्य होता है। तो कहते हैं कि हे कुंडल तू कितना भाग्यशाली है कि कृष्ण के कान में जाके पड़ा है। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, गोकुले भ्राजमानम का मतलब है कि ये सारे गोकुल के निवासी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यू नो साधारण दिखते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गोपी गोप है करके, लेकिन उनका डिवोशन इतना बड़ा है कि उसको कोई, इंडीड कृष्णा ऑल्सो टोल्ड गोपीज कि आई कैन नॉट रीपे यू, यू नो जो आपने मुझे दिया है आई कैन, और कृष्ण ने इतनी बड़ी जो भगवद गीता सुनाई वो कहाँ से सीखी, एनीबडी हैज थॉट एनी टाइम कि भाई कृष्ण ने इतना भगवद गीता सुना है लेकिन ये कृष्ण को आया कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया? हाँ, एक बात यह है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, यू नो, लेकिन दूसरा है कि गोपियों से सीखा उन्होंने। जब कृष्ण कहते हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि यथासि जस्या मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो गोपियां अपना काम करते करते कृष्ण का स्मरण करती थी। यू नो, अर्जुन को कहते हैं माम स्मरण युद्ध च, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। ये आइडिया कहां से आया कृष्ण को? गोपियों से आया, क्योंकि गोपियां जब कुछ भी काम करती थी वो कृष्ण को ध्यान में रख के करती थी। हम लोगों के लिए कृष्ण को ध्यान में लाना बहुत कठिन है। हम लोग कभी किसी को मेडिटेशन के बारे में या कुछ बोलते हैं या चैंटिंग के बारे में, तो कई लोग और हम खुद भी, है ना, भगवान के अंदर हमारा मन नहीं लगता, भगवान मन में घुसते नहीं है। लेकिन गोपियों की ऐसी स्थिति थी कि भगवान मन से बाहर नहीं जाते थे, तो वो कहती थी कान्हा तू चला जा, है ना, तू चला जा ताकि थोड़ा घर का काम कर सकूं मैं, है ना। तो कई बार गोपियां जब कान्हा को ताना मारती थी और कहती थी तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं काला नहीं हूं, और कृष्ण उसको जवाब देते थे और वो कहते थे कि मैंने काली रात में जन्म लिया, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन द डार्क नाइट, मे बी यू कैन सी दैट आई एम डार्क, और काली गाय का दूध पिया, मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है, और मेरा ये दुपट्टा है ना वो काले कलर का है, तो उसका शेड मेरे चेहरे पे आता है, वैसे मैं काला नहीं हूं, मेरे कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूं। तो गोपियां मानती नहीं है कि नहीं नहीं नंद गोरे यशोदा गोरी तू कहां से काला कालूटा आ गया, ऐसा भगवान को बोल रहे हैं, सोचो, जिसकी पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी और 1000 लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती है, हम लोग सब लक्ष्मी के पाने के लिए इधर तक आ गए, यू नो, वो लक्ष्मी लाइन में खड़ी रहती है, उसको गोपियां ऐसा बोल रही है। तो कृष्ण दूसरा रीजन देते हैं, वो कहते हैं मैं काली दाह में कूद गया, कि मैं काली दाह कालिया नदी के अंदर में कूद गया और काले नाग से युद्ध किया, और काले नाग से युद्ध किया मैं फण फण पे मैं नाचा इसीलिए काला हूं। तो बोले कि मैं इतने सारे फणों के बीच में नाचा हूं, हजारों फणों के बीच में, तो तुमको शायद काला दिखाई दे रहा, मैं काला हूं नहीं। तो गोपियां फिर भी नहीं मानती है, तो फिर कृष्ण अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं उनके ऊपर, गोपियों को कहते हैं कि सखी आंखों में काजल लगाती है, और वो एक अलग जमाना था, हाँ, द्वापर युग, जहां पर काजल सिर्फ काला होता था अभी तो अलग अलग तरह के काजल आते हैं, ब्लू कलर का, पीला कलर का, नारंगी कलर का, और पता नहीं किस तरह का, यू नो, कभी कभी ऐसा मेकअप होता है लगता है पूतना साक्षात आ गई सामने या सुरपंखा आ गई, यू नो, इस तरह का मेकअप लोग करके आते हैं। तो कहते सखी आंखों में काजल लगाती है और नैनों में मुझको बसाती है, और दिन रात तू मुझे देखते रहती है, देखते रहती है, देखते रहती है, उस देखने की वजह से मैं काला हो गया हूं, इतना तुम लोग मुझे देखते हो काजल लगा के। तो सखी आंखों में काजल लगाती है और नैनों में मुझको बसाती है, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूं। तो कृष्ण कहते कि मैं इसीलिए काला हूं। तो ये जो गोकुल भ्रज मानव, ये जो गोकुल के वासी हैं, वो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने के लिए रेडी है कि नहीं? एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा था कि इफ फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग कृष्णा और कृष्ण प्रेम, इफ यू हैव टू कम ऑन द रोड, आर यू रेडी? कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर रस्ते पे भी आना पड़े तो क्या हम लोग तैयार है? उन्होंने कहा आई डोंट विश दैट यू कम ऑन रोड, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जब वैसा कोई करेगा तो क्या होगा? गोकुल वासियों की तरह तब कृष्ण हमारे जीवन के रथ पे आके बैठेंगे। यू नो, जब अर्जुन ने क्या किया, उसके पास ऑप्शन था सेना लेने का है या कृष्ण को लेने का है। कृष्ण निहत्था, दुर्योधन भी मांगने के लिए गया था, अर्जुन भी मांगने के लिए गया था। दुर्योधन ने सोचा मैं कृष्ण को और सेना को दोनों को ले लेता हूं, और कृष्ण ने वहां पे गुगली डाल के बोला सेना अलग मैं अलग, अभी मांग क्या चाहिए? दुर्योधन वॉज वेरी क्लियर कि मैं सेना ले लूंगा, लेकिन कृष्ण ने कहा क्या कहा, पहला चांस अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन छोटा भाई है उसको लेने दे। और अर्जुन सेना मांग सकता था, लेकिन सेना को छोड़ के अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को मांगा। सो कृष्ण ने भी अर्जुन को मजाक मजाक में कहा कि यार तू सेना मांग सकता था, मुझे क्यों मांगा, मैं तो ग्वाला हूं, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्यों मांगा? तो ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन तो पूरा माखन ले गया, तेरे पास बच गई छाछ, तो अर्जुन भी बड़ा क्लियर था अपने माइंड में, कहा कि मैं हूं कृष्ण का दास, कभी नहीं होऊंगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया तो क्या, माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर मेरे पास है, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये गोकुल के जो वासी है वो कृष्ण के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। कोई अगर जीवन के अंदर समस्या आई तो कृष्ण, ऐसा नहीं था कि कृष्ण के जन्म के पहले समस्या नहीं थी, बहुत सारी समस्या थी, और कृष्ण का जन्म होता है फिर भी समस्या कंटिन्यू रहती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है बिफोर एंड आफ्टर, कि बिफोर देर इज नो शेल्टर, आफ्टर देर इज अ शेल्टर। सो कृष्ण का आश्रय है गोकुल वासियों के पास में, गोकुले ब्रजमानम और यशोदा भियोलुक। ये यशोदा है, एनीवे मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इस वर्ड के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। यशोदा मतलब वो यू नो जो कृष्ण के लिए सर्वोत्तम सोचे, जो कृष्ण को यश देती हो, वो यशोदा। वो क्या कर रही है, भगवान के लिए अच्छा सा माखन बना रही है, और वो यशोदा के डर से कृष्ण भाग रहे हैं, जिसके डर से साक्षात मूर्तिमान भय भयभीत होता है, उससे कृष्ण भयभीत हो रहे हैं, भाग रहे हैं। और फिर भागते भागते यशोदा ने क्या किया, पराम यशोदा भियोलुख लाधव मानम परामृष्टम अत्यंत धृत्य गोपिया। यशोदा भाग के और कृष्ण को उसने पकड़ लिया और कृष्ण को हरा दिया। अभी हम लोगों में से हार के किसी को आनंद मिलता है क्या, यू नो हम लोग सब जीवन में क्या चाहते हैं, जी वी वॉन्ट टू बिकम नंबर वन। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, कूट कूट के हमारे दिमाग में ये बात बचपन से भर देते हैं कि जीवन में कुछ करना है तो सर्वोत्तम और नंबर वन, और सबको पछाड़ के आगे बढ़ना है। भागता है, कोई पीछे देखता है थोड़ा दूर है तो भी डर लगता है कि कहीं आगे नहीं निकल जावे। ये शिक्षा प्रणाली हमको दी गई है, लेकिन कृष्ण को हार में आनंद आता है। ऐसे बताते हैं कि सब जगह पे लोग यू नो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फूल वाला है उसके पास सब लोग जाके हार मांगते हैं कि हार देना। समझ में आया आपको, भगवान के लिए जो हार चढ़ाते हैं वहां पे जाके हम हारने की बात करते हैं, अदरवाइज सब जगह जीतने की बात होती है। लेकिन कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मेरे को पकड़ना है, हाँ मेरे को पकड़ना है, तो आप हारना सीखो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन के अंदर सोसाइटी में, जैसे मैंने पहले स्टार्ट कहाँ से किया, शिव जी के परिवार से, कि शांति चाहते हैं तो एक परिवार में रह के भी किस तरह से यू नो हमको सीखना है कि एक दूसरे के शत्रु हैं ना, सांप चूहा का शत्रु है, मोर सांप का शत्रु है, शेर मोर का शत्रु है, सारे शत्रु एक घर में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह रहे हैं ना, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये समझना। तो कृष्ण भी यही मुद्दा बता रहे हैं कि देखो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वैसे बांधने के लिए तैयार हो कि नहीं हो करके। तो आप जब ऐसा कोशिश करोगे तो आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम बढ़ा के आने वाला ही हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से ये पूरा दामोदर अष्टकम जो है ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, और बहुत सारी चीज़ें इनके इसके अंदर उन्होंने बता दी है कि किस प्रकार से भगवान रोते हैं। यू नो भगवान कभी रोते नहीं है, लेकिन इसमें रो रहे हैं। यू नो भगवान को कभी भूख नहीं लगती है, एक्चुअली भगवान का एक नाम आत्माराम आप्त काम है, लेकिन यहाँ पर भगवान भूखे हैं। यू नो भगवान को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रोध कर रहे हैं। भगवान खुद कहते हैं कि लालच नहीं करनी चाहिए। यू नो गीता में भगवान कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। तो यहाँ पे भगवान को लालच भी हो रही है, और वो सारे जो भगवान के ऐश्वर्य है वो एक एक भगवान यहाँ पे त्यजते जाते हैं, किसके लिए, यशोदा के लिए। वो यशोदा भूयोलुक, इसलिए यशोदा से डर के भाग रहे हैं। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने का हमारे को इस कार्तिक के महीने में चांस मिला है, है ना। और हम लोग कार्तिक में भीष्म पंचक के अंतिम दिवस में बैठ के और इसको भगवान के कीर्तन और कथा को सुन रहे, इससे बड़ा सौभाग्य हमको और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने कार्यक्रम यहाँ पे अरेंज किया। थैंक यू फॉर नीता माता जी ऑल्सो एंड ऑल द डिवोटीज हु हैव कम। सो कई बार हम लोग ऐसा बताते हैं कि जर्नी व्हेन इट कम्स टू एन एंड एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो ये कार्तिक महीने का आज एक तरह से यू नो अंतिम दिवस है, लेकिन आज से शुरुआत है कि हम लोग इसी कॉन्शियसनेस को पूरे साल भर बना के रखें और इंतजार करें दूसरा कार्तिक कब आएगा। तब तक जो हमारा कॉन्शियसनेस है कुछ ना कुछ थोड़ा एडिशनल हमको करना चाहिए, यू नो। सो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान को सेंटर में रख के काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भला होगा। और हम लोग वी हैव बुक्स हियर फॉर अस टू डिस्ट्रीब्यूट टुडे, किताबें हैं क्या हमारे पास, आई एम नॉट श्योर टुडे। तो एनीवे हम लोग वैसे गीता क्लास भी कंडक्ट करते हैं सिटी में, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अटेंड कर सकते हैं। थर्सडे के दिन होता है, सैटरडे के दिन होता है, सैटरडे 4 to 5 मेरे घर में होता है क्लास, और थर्सडे को कॉर्निश एरिया में 7:30 to 9. So you can please join, help us propagate this mission far and wide. ये प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि जितने लोगों ने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, सभी लोग सहायता करो. भारत भूमि ते जन्म होइले मनुष्य जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार. ये परोपकार करना चाहिए और हमको गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए. आप जब भी भारत जाते हो, यहाँ पे किसी को गिफ्ट भी दे रहे हो तो गीता गिफ्ट करनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस. तो इतना कह के आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. सो नाउ वी विल हैव दामोदर आरती जी एंड वंस अगेन विनय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू नीरज जी.